ओम शांति। वैसे तो समुद्र में तैरने के लिए शिप चाहिए होता और आकाश में उड़ने के लिए प्लेन चाहिए होता है, कहीं बहुत दूर जाना हो तो रॉकेट भी चाहिए होता। परंतु हमारे पास, सबके पास एक तो शरीर है, ये रथ है हमारा, ये हमारा रथ है, और इसके अंदर एक आत्मा नाम की चीज है जो रथी है, जिसने उड़ना या तैरना है या सैर करना है। इसीलिए जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं अर्थी जा रही है, अर्थात उसका रथी जो था वो निकल गया, अरथी यानी बॉडी रह गई। बहन जी ने बताया कि हमारा जो विंग है उसमें एक तो शिपिंग, फिर एविएशन और ट्रेवल आता है। तो हमने कहा अच्छी बात है, वो तो दुनिया की चीजें हैं, पर हम यात्री हैं, जीवन यात्रा भी तो यात्री है, तो हम ट्रेवलर हो गए। अब उड़ान की बात है, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, ऐसी कौन सी चीज आपके पास है जो बिना टिकट, बिना पासपोर्ट, बिना खर्चे जितनी मर्जी सैर कर लो कर सकती है, और करते 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 आप उस पार भी पहुंच सकते हैं जहां इनके हिसाब से मेरा आप जल्दी जाना होने वाला है। अच्छा, तो हम एक प्रश्न से शुरू करते हैं। मैं आपसे तीन प्रश्न पूछूंगा, कहो तो चार पूछ लूं। एक एक प्रश्न का, बहुत आसान प्रश्न है, प्रसन्न करने वाले। आपने नाश्ता तो कर लिया है ना, तो और भी अच्छा है। तो एक प्रश्न का इस लाइन से जवाब दे दें, एक का इस लाइन से, एक का इस लाइन से, चौथे का ना आए तो मैं ही दे दूंगा, तकलीफ की बात नहीं। प्रश्न बड़े आसान है। पहला प्रश्न है कि भोजन के बिना, ब्रेकफास्ट को आप भोजन ही समझ ले, कई लोग भोजन की तरह ही ब्रेकफास्ट करते हैं। अच्छा, तो भोजन के बिना एक व्यक्ति कितना समय जिंदा रह सकता है, इस साइड से कोई भी बताए फटाफट। हैं जी, अच्छा ठीक है, सुन लिया जी सबने। 158 आवर्स, ओके ठीक है। अब इधर वाले, आपका तो बहुत आसान है, ठीक है। पानी के बगैर, पानी के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला, नींबू, गंजबी सब इंक्लूड है, पानी के बगैर एक व्यक्ति कितना समय जिंदा रह सकता है? कितना बताया? अच्छा, अब आप तो समझ ही गए होंगे आपका अगला प्रश्न क्या है। हवा के बिना एक व्यक्ति कितना समय जिंदा रह सकता है? भैया आपके, आपकी तो टर्न नहीं है, इधर बोलो जी। हवा के बिना, क्यों? आप प्राणायाम वगैरह नहीं करते, कुछ सांस रोकने वाले? अरे हवा कुछ तो रह सकते हैं, लोग तो दबे हुए मलबे में से निकले आते हैं, आपके तो एक सेकंड भी नहीं। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं वो बताइए, बाद की बात फिर वो एडी हो जाती। हाँ बोलो जी, हवा के बिना कितने मिनट? 10 मिनट। अच्छा, अब लास्ट प्रश्न है आप वाला कि आत्मा के बिना कितना समय रह सकते हैं? है जी, आत्मा के समय बिना ओम शांति। अच्छा, अब ये बताओ कि आज जो आप यात्रा करने वाले हैं, फ्लाइंग हाई, सेलिंग स्मूथ, रिमेनिंग लाइट, वो कौन करने वाला है? आपकी ये बॉडी करने वाली है, क्योंकि मैंने कहा फ्री है, विदाउट पासपोर्ट, विदाउट टिकट, विदाउट लगेज। अच्छा, तो आत्मा करने वाली है, ठीक है। वैसे भी शरीर छोड़ देंगे तो जो बातें कहते हैं, या तो कहते हैं परलोक सुधार गया, या कहते हैं स्वर्गवास हो गया। कौन होता है? आपकी ये बॉडी होगी क्या? परलोक कौन सुधारेगा, स्वर्गवास कौन होगा? आत्मा ही होगी। इसलिए आज का जो यात्रा करने वाला है वो है आत्मा। पर प्रॉब्लम ये है, अगर आत्मा आपके शरीर से निकल गई तो फिर तो दूसरे लोग कहीं और ले जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप जब रात को सोते हैं तब भी तो आप यात्रा करते हैं, आपका बॉडी तो पड़ी रहती है, पर आत्मा भी उसके अंदर ही रहती है। पर आप अच्छी अच्छी यात्राएं करते हैं, कई बार तो भयानक यात्रा होती है, आंख खुलती है कहते शुक्र है सपना ही था, अच्छी अच्छी भी होती है। वो कौन करता है? यहां भी बैठे बैठे आज का ही ले लीजिए, अभी तो 11:30 बजे हैं, सुबह से लेकर 11:30 बजे तक आप अपनी बॉडी में ही बैठे थे या कई जगह यात्रा की? कोई बॉम्बे चला गया, कोई कहीं चला गया, है? वो किसने की है जी? मन ने। तो ठीक है, तो अब आपका पक्का पता लग गया आपको ट्रेवलर कौन है, आपका मन है। अच्छा जी, मन को कहीं भी पहुंचने में कितना टाइम लगता? फास्टर फूस्टर नहीं है, सीधा बताओ। एक पल तो बहुत होता है। मन की यात्रा की स्पीड है एक थॉट, थिंक एंड यू आर देयर, है ना? मतलब क्या? अब यहां आप बैठे हैं, हम कहें अपने घर के किचन में चले जाओ, नल खोलो, आप खोल सकते हैं ना? पर पानी महंगा आजकल, बंद कर दो, लेकिन खोल तो सकते हैं। कितना टाइम लगा? अच्छा जी, अब इसके द्वारा ना आपकी आत्मा को निकलने की जरूरत है, ना शरीर को कष्ट देने की जरूरत है। इस मन के द्वारा आज हम फ्लाई हाई, सेल स्मूथ, रिमेन लाइट, और वो भी हम ट्रेवलर के तौर पे या जीवन यात्रा करने के हिसाब से करते हैं। आप कर ही रहे हैं वैसे तो, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है मैं लोनावाला चला जाऊं, मैं दुलोजी चला जाऊं, समुन्द्र में चला जाऊं। इसलिए अच्छा जी, अब आप कहेंगे एक तो होते फालतू घूमना, ऐसे घूमते रहते, नहीं, यात्रा का मजा भी आता है। तो हर व्यक्ति यात्रा किस लिए करनी चाहता है? उसको अच्छा लगे। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में रोज ये बॉडी तो आपको मिली हुई है कि आत्मा टिकी रहे, ये तो भूत बन जाते हैं, इसलिए। परंतु रोज डेली आप सुबह से शाम तक यात्रा करते ही रहते हैं, ये अलग बात है कि आपकी यात्रा लोकली होती है, यानी जैसे किसी तोते को पिंजरे में बहुत देर रख दो, पिंजरे से निकाल भी दो तो फुट फुट करके वहीं बैठा रहता है। तो आपकी यात्रा क्या होगी, मैं फलाना हूँ, ये मेरा घर है, इतनी मेरी आयु है, ये वगैरह लिमिटेड सी होती है, पर करते हैं। तो बॉडी में तो आप रहते ही नहीं सारे दिन में, कितना टाइम एक्चुअली बॉडी में रहते हैं आप, बहुत थोड़ा टाइम। सिर्फ ये है कि वहां मन अपनी मर्जी से यात्रा करता है और यहां आप अपनी मर्जी से मन को यात्रा कराएंगे। अब हमने आपको कहा हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में क्या चाहता है। मैं आपसे 5 बातें पूछूंगा, एक नहीं, एक एक बात का आपने जवाब देना है। 5 बातें पूछूंगा, एक शब्द देना है ना, जैसे कोई कुछ भी कह सकता है, पर एक आंसर, मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं। अब इधर से शुरू करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, इस लाइन वाले में से कोई भी एक बताइए आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। हाँ जी, खुशी, भाई नोट कर लेना खुशी। अच्छा, यहाँ कोई बहन तो नहीं जिसका नाम खुशी हो, गलती ना लग जाए, ठीक है, खुशी, ओके। ये जरा बहुत, इसमें ज्यादा भाई बहन है, इनसे 2 बातें पूछेंगे। अगली सीटों वाले बता दो कोई भी क्या चाहते हैं। हाँ जी, क्या शांति, शांति हो गई जी, दोनों फीमेल हैं, खुशी शांति। पीछे वाले एक और बता दो हैं, उधर नहीं इधर, जरा जोर से बोलो। मैं प्रेम, अच्छा प्रेम, प्रेम तो दोनों भाइयों का भी नाम होते हैं, बहनों का भी होते हैं। लो जी, खुशी शांति प्रेम, 3 हो गए। हाँ जी, इधर वाले क्या, हेल्थ है, संतुष्टता, क्योंकि हेल्थ की तो बहुत भारी डेफिनेशन है, शरीर की, मन की आदि आदि, वो छोड़ दो, संतुष्टता, ठीक है, चलो संतुष्टता। चलो 4 में पूरा कर लेते हैं, फिर बहन जी कहेगी आपका टाइम पूरा हो गया। अच्छा, अब ये बताओ इन 4 में कॉमन चीज क्या है, 4 में, खुशी शांति प्रेम और संतुष्टता, 4 में कॉमन चीज क्या है, क्या मन, मैं ही शांत रहना, मन, हम ना, मैं एक होता है, मैं हो गया, हम तो 2 होते हैं, मैं एक होता है। अब बताओ आप, मैं चाहते हैं या हम चाहता है, मैं, कौन सी मैं, कौन सी मैं, जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ, आपके ड्राइविंग, वो मालूम है, इनकी कॉमन चीज क्या है, ये चीजें ना तो फिजिकल है ना मटेरियल है, ये यानी भौतिक चीजें नहीं है। कोई भी चीज आप सोचोगे मैं जिंदगी में फाइनली ये चाहता हूं, चाहे कोई मुक्ति कहता है, कोई स्वास्थ्य भी कहता है, कौन सा स्वास्थ्य, वो तो शरीर का होता है, तो आप देखेंगे स्वास्थ्य भी एक मटेरियल और फिजिकल चीज नहीं है। ये कह सकते हैं इसका शरीर स्वस्थ है, इसका मतलब हुआ कि सारी ही चीजें अनुभूति की हैं जो आत्मा करती है। आत्मा निकल जाए तो काहे का प्रेम, डेड बॉडी हो चाहे अपने चाचा की हो, वो कहे आओ तो आप क्या कहेंगे, कह गए तो भूत है इसलिए वो नहीं। अब आपको पता लग गया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आत्मा है, मैं हूं। आत्मा के बगैर तो ये बॉडी भी बेकाम है, और आत्मा के अंदर भी मन है, क्योंकि मन अनुभूति कर सकता है, चाहे वो प्रेम की हो, चाहे शांति की हो, चाहे खुशी की हो, चाहे संतुष्टता की हो। अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप बताओ कि जो जीवन यात्रा आप कर रहे हो नॉर्मली, उससे आपको जो चीज आप चाहते हैं वो मिलती है, और अगर मिलती भी है तो सदा रहती है या टेम्परेरी मिलती है? एक तो मिलनी चाहिए, दूसरे सदा मिलनी चाहिए। तो इसलिए यहां आपको इस जगह माउंट आबू में लाया गया। दुनिया के अंदर जितनी प्रकार की भी शिक्षाएं हैं, जितनी प्रकार के भी एजुकेशन है, कोई भी विशेषताएं हैं, सब शारीरिक हैं। शरीर गया, आप मरे, जग पर लय। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास करी 1956 में। जिस दिन ये शरीर छूटा, अगले जन्म में कहेंगे तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, या कहेंगे पहली से फिर पढ़ो, खत्म हो गया। मैंने कुछ बैलेंस इकट्ठा किया, रिश्तेदार बनाए, अगले जन्म में कहेंगे हम तेरे रिश्तेदार थे ना, इसलिए ये बॉडी ली है। तो दुनिया में हमको ज्यादा से ज्यादा बॉडीली बात सिखाते हैं, उसका भी आजकल भरोसा नहीं। लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते फिरते हैं, है तो डेथ इंश्योरेंस, कोई लाइफ किसी के इंश्योर नहीं करता, ये वो करते फिरते हैं। तो यहां वो बात नहीं हो रही। अब सवाल ये है, मान लो आप खुशी, चलो एक खुशी को ही ले लेते हैं, या प्रेम और खुशी कोई चीज ले लो, अगर आप चाहते हैं, आपका मन है, आपको कौन रोकता है? और अनुभव मन ने ही करना है, ठीक है ना। हमने फैसला कर लिया कि खुशी को ऐसे नहीं टेम्परेरी के तमाशा देख लिया, वो तो टेम्परेरी है। परमानेंट खुशी चाहिए, परमानेंट प्रेम चाहिए। पहली बात तो शरीर को तो हो ही नहीं सकता, शरीर है ही नहीं परमानेंट, तो परमानेंट तो होगी आत्मा। अब जिनको ये चाहिए उनको कौन रोकता है कि भाई तुम अपने टीवी में, अपने मन के पर्दे पर ऐसी चीजें लाओ, अपनी मेमोरी में वही चीजें रखो जो आपको, मान लो खुशी चाहते हैं, खुशी प्रदान करें? आपको कोई रोकता है? आपका ही मन है, आपकी मेमोरी है, आपने जिंदगी में बहुत कुछ किया है, आप जिंदगी की खुशी की बातें भी याद रख सकते हैं कि नहीं? करने बैठो, बड़ा मजा आएगा। आप अकेले बैठे हैं और आप कोई जिंदगी की खुशी की बात सोच रहे हैं, तो आपके चेहरे पे क्या आ जाएगा? खुशी आ जाएगी। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। कोई नया फ्रेंड आया, उसने क्या कहेगा? उसको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, क्या कहेगा? बहुत खुश नजर आ रहे हो भाई, क्या सोच रहे हो? अब उसको भी पता लग गया कि आप खुशी की बात सोच रहे हैं। तो कौन रोकता है कि हम अपने मन के पर्दे पर गम की बातें ले आए, प्रेम की जगह घृणा की बातें ले आए, शांति की जगह अशांति की बातें ले आए, संतुष्टता की जगह सदा हाय हाय करते रहे, ये भी नहीं वो भी नहीं? इसलिए दुनिया में तो बहुत कुछ है। आप मार्केट में भी जाते हैं तो आप अपनी मर्जी की चीज की दुकान पे रुकते हैं ना। मान लो मैं मांस नहीं खाता, अब वहां पर एक दुकान है, उसमें बकरे टंगे हुए हैं, लटके हुए हैं, या मछलियों की वो लगी हुई है, मैं मार्केट में जाता हूं। अब मैं उसको तो नहीं कह सकता तू दुकान ना लगा, पर मैं वहां से जल्दी जल्दी रुमाल रख के गुजर जाता हूं। आप जाते हैं, कोई गंदा नाला आ जाता है, हैंकी रख लेते हैं, बगीचा आ जाता जोर से सांस लेते हैं। तो हम अपने मतलब की चीज लेते हैं ना। तो अब आपको कौन रोकता है कि भाई जो आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करके रखो, जो नहीं चाहिए वो रिजेक्ट कर दो। तो बाकी चीजें बीच में क्यों आ जाती हैं? चाहते आप खुशी हैं, निकले थे हम खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए, ये तो ठीक नहीं है ना। अगर हमें खुशी चाहिए तो खुशी रखनी चाहिए, प्रेम चाहिए तो प्रेम की बातें करनी चाहिए। तो हर व्यक्ति, पंछी भी अपनी तरह के लोग पंछियों के साथ उड़ते हैं। तो यहां पर ये शिक्षा दी जाती है, अगर आपने ट्रेवल हाई करना है, अर्थात अपने मन की स्थिति को ऊंचा रखना है, उसका भी फार्मूला है। वो क्या है? इंग्लिश में कहा जाता है, योर एटीट्यूड डिटरमिन्स योर ऑल्टीट्यूड। क्या मतलब हुआ इसकी हिंदी कौन करेगा? योर एटीट्यूड डिटरमिन्स योर ऑल्टीट्यूड। हाँ, आपका जो मनोवृत्ति है वो बताएगी कि आपकी स्थिति कितनी ऊंची है। अगर मनोवृत्ति ऊंची है तो स्थिति ऊंची है, मनोवृत्ति मध्यम है तो स्थिति मध्यम है, और मनोवृत्ति कनिष्ठ है तो आपकी स्थिति भी कनिष्ठ है। अब आपको किसने, आप चाहते हैं फ्लाई हाई कि मेरी तो ऊंची उड़ान रहे, पंछी होकर कोई कहे मेरी नीची उड़ान रहे? नहीं, प्लेन तो 36,000 फुट पे उड़ते हैं, आप तो आत्मा है, मन है। इसलिए आप देखेंगे कि घर से हम निकले कि हम ऊंची उड़ान उड़ेंगे, यानी मन ने सोचा, आज सुबह सुबह सोचा कि मैं ऊंचे से ऊंची उड़ान क्यों ना उड़ूं, जब फ्री है, मेरा ही मन है। फिर क्या होता, जो एविएशन पेट्रोल होता है वो रिफाइंड होता है, उसमें मोटर कार वाला पेट्रोल नहीं पड़ता, डबल रिफाइंड पड़ता है, क्योंकि उसने ऊंचे उड़ना है। अब आपके मन ने ऊंचे उड़ना है, और मन के पेट्रोल क्या है आपको पता? मन का पेट्रोल क्या है? विचार, लंबा शब्द है, संकल्प। शुभ संकल्प के पेट्रोल पर मन उड़ता है, ठीक है। अब अगर उसके अंदर जरा सा कोई मिक्सचर हो गया तो उसकी उड़ान नीचे हो जाएगी आपकी। अच्छा, और ज्यादा मिक्सचर, खूब उल्टा ही मिक्सचर हो गया तो धरती पर ही प्लेन चलेगा, आप उसमें सब्जी ला सकते हैं, राशन खरीद सकते हैं। लोग हंसेंगे, इसके पास प्लेन है, देखो ये कैसे यूज कर रहा है। इसलिए एक फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है। किसी ने कहा था मुझे संतुष्टता चाहिए, फार्मूला है। आप क्या उस फार्मूले को लेना चाहते हैं? फ्री है, लेकिन आपको यूज करना पड़ेगा। ऐसे हम फालतू में फार्मूला किसी को दे दें, वो कह दी मेरे तो काम का ही नहीं, रख ले, फोटो लगा के रख ले। नहीं, क्या आप सचमुच सचमुच दिल से ऊंची उड़ान चाहते हैं, संतुष्ट रहना चाहते हैं? आप कहेंगे कोई रहा आज तक? पहले ये दिखाओ। जो व्यक्ति ऊंचे ऊंचे विचार वाला होता है, ऊंची स्थिति वाला होता है, उसके आगे हम जाके क्या करते हैं? अगर वो आपके सामने आ जाए तो उसके सामने आप कैसे पेश आते हो? उसको नमस्कार करते हो, उसके आगे झुकते हो, ठीक है। आप मंदिरों में, गुरुद्वारे में जाते हो तो वहां झुकते हो, किसके आगे झुकते हो? शराफत के आगे? भगवान तो दूर की बात है, भगवान तो चाहते ही नहीं मेरे आगे कोई झुके। लेकिन जो होके गए हैं, मंदिरों में देवी देवता है, एक लक्ष्मी नारायण कोई ले लो मूर्ति खड़ी है, उसके आगे जाके आप क्या कहते हो? अच्छी अच्छी बातें कहते हो, आप सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, फिर यहां फुल स्टॉप नहीं लगाते, फिर अपने लिए भी वर्णन करते हो, मैं नीच हूं, मैं कपापी हूं, मैं कपटी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं। अब बताओ हो गया फर्क। इसलिए अगर हमको सचमुच ऊंची स्थिति में रहना, फिर ऐसा है कि ऊंची स्थिति सिर्फ वहां पर हवा में है, आपको ऐसी जगह नहीं जहां कोई खड़े हो जाओ। इसलिए एक बार ही रहे, फिर सदा रहना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल आपको पता है नकली भी बहुत है। एक असली झरना होता है, वो बहता रहता है, और नकली आप घर में लगा सकते हैं, बटन दबाओगे झरझर झरझर करेगा, बटन रोकोगे रुक जाएगा। फूलों के बगीचे में असली खुशबू आती है, आजकल नकली भी घर में रख सकते हैं, बटन दबाओगे खुशबू आनी शुरू हो जाएगी बटन। तो वो नकली वाला नहीं, वो फिर अंदर से परमानेंट होना चाहिए। इसलिए अगर आपने संतुष्ट रहना है, अगर आप चाहते हो कि आज यहां से निकलने के बाद आप सदा संतुष्ट रहो, सदा, एक तरीका है, वो क्या है? सदा अपने मन के अंदर देने का भाव रखो, मन में कि मैंने देना है, लेना नहीं है। ऐसे नहीं हम कह रहे अपने पैसे दे दो, अपने कपड़े दे दो, अपना कंबल, नहीं। एक डीप बात है कि आपको देने का भाव रखना है, लेने का नहीं, तो आप सदा संतुष्ट रहेंगे। आप कहेंगे कैसे? मैं 1956 का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और अकाउंटेंसी में क्या सिखाया जाता है? जो आए उसमें फायदा है, जो जाए उसमें नुकसान है। ये अकाउंटेंसी का नियम है। ब्रह्मा कुमारी में मैं क्यों आ गया? तो मुझे पता लगा कि ये उल्टा सौदा है। आप देखेंगे हमारे पूर्वज देवता कहलाते थे। सिख लोग भी कहते हैं मानस से देव किए करत न लागी बात, देवता। अब देखो प्रकृति में हर चीज दे रही है, एक भी चीज ले नहीं रही। पेड़ फल दे रहे हैं ना, नदी जल दे रही है, सूरज रोशनी दे रहा है, ये कमरा आपको स्पेस दे रहा है, कोई भी एक भैंस आपको दूध दे रही है, धरती आपको फसलें दे रही है, सब दे रहे हैं। भगवान को तो लोग दाता कहते ही हैं, और हम अकलमंद लोग हैं आज के। हमारे पूर्वज ये जानते थे, वो देवता कहलाते थे, उन्होंने कभी लेने का नहीं सोचा, और आज उसकी मूर्ति के आगे भी जाके गरीब आदमी भी दो केले दो फूल रखे आता है, देवता। और हम जिंदा हम हो गए देवता, हम बड़े समझदार हो गए, अभी लेने में फायदा है। और नतीजा क्या है? अब चले जाओ कहीं, हर एक लेने की चाहता है। कपड़े वाला कहेगा घड़ी वाले से मैं कुछ ले लूं, घड़ी वाला ऐसे कहेगा तेरी घड़ी भी खराब है मैं भी ले लूं। अब सारे देवता बन गए तो देवता कौन रहा? आपने वो कहानी सुनी है कि एक बादशाह ने कहा मेरी प्रजा में ईमानदारी कितनी है, मैं टेस्ट करना चाहता हूं। तो उसके मंत्री ने कहा हजूर हमारे राजधानी में एक बहुत बड़ा सूखा तालाब है, सबको कह दो कि रात को एक लोटा दूध उसमें डाल जाए, सुबह आपको पता लग जाएगा। आपको कहानी पता है, बचपन में पढ़ाते हैं। तो महाराजा ने ऑर्डर कर दिया, सुबह देखा तो सारा तालाब पानी से भरा हुआ था। हर एक ने कहा दूसरा दूध डालेगा। तो ये जो हालत है, तो जब सारी चीज दुनिया में दे रही है, मकान आपको सुख दे रहा है, माइक्रोफोन आपकी आवाज को बुलंद कर रहा है, बिजली आपको लाइट दे रही है, अब देखो ये देने वाले अपने लिए नहीं है, ये बिजली अपने को लाइट नहीं देती, ये माइक अपनी आवाज को बुलंद नहीं करता, नदी अपना जल नहीं पीती, सूरज खुद को रोशनी नहीं देता, इससे क्या पता लगता है? देने में लेना है, लेकिन पहला मन में मेरे देना होना चाहिए। अब ब्रह्मा कुमारी किसी से पैसा नहीं लेती, कैसे चलती है? देती रहती, लोग आप ही दे जाते हैं कि भाई ऐसा तो हमने कोई बंदा ही नहीं देखा। इसलिए ये फंडामेंटल रूल है, अगर आप संतुष्ट रहना चाहते हैं तो मन से ये निकाल दो, ये पहले झुके तब मैं झुकूं, ना आप झुक जाओ वो अगला आप पे झुक जाएगा। आप अगले के आगे झुकोगे वो आपको थप्पड़ थोड़ी मारेगा, वो भी झुकेगा। तो झुकना झुकाने के लिए है। ये फंडामेंटल नियम हमने भगवान से सीखा, आप भी नोट कर लो। दूसरी बात, देना क्या है? कई लोग डर जाते हैं, कुछ तो देना पड़ेगा ना। अगले को क्या चाहिए? हम आपको बता चुके हैं कि दूसरे व्यक्ति को एक चावल का दाना भी आत्मा के अंदर नहीं जाता, आत्मा के अंदर चावल का टेस्ट जाता है। आप कुछ भी दुनिया में कर लो, गर्म हवा आ जाएगी, ठंडी हवा आ जाएगी, तो एसी आत्मा के अंदर नहीं जाता, ठंड की फीलिंग जाती है, खाने का स्वाद जाता है, क्योंकि आत्मा फिजिकल नहीं है। तो अगले को क्या चाहिए? उसको चाहिए सम्मान, उसको चाहिए रिस्पेक्ट, उसको चाहिए खुशी, उसको चाहिए सत्कार, उसको चाहिए इज्जत। और वो कैसे देंगे? आप वैसे देने जाओगे, मान लो किसी की आपसे नहीं बनती, आपने ब्रह्मा कुमारी से लेक्चर सुना, भी इससे दोस्ती करनी है, आप उसके पास बूके ले गए फूलों का, वो फटाफट टोकरी ले ले अपना बूके, ये नहीं है। ये मन की बात है, हम मन से दूरी पैदा करते हैं, मन से नजदीकी पैदा करनी है। तो फॉर्मूला ये है, अपने मन के अंदर मेरा मन है, दूसरे का मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कहूं वो ऐसे करे ना, अपने मन के अंदर शुभ भावना और शुभ कामना रखो। आपका मन है, एक तो आपके लिए शुभ हो जाएगा। कहते हैं ना, जो तुझको कांटा बोए उसको क्या बो, हम गाते हैं, जो तुझको कांटा बोए उसको कांटा नहीं बोल, वो ईंट का जो आप पत्थर से नहीं दे, ये कहा गया है उसको बो तू फूल, तुझको फूल के फूल है, तू फूल बोएगा तुझे फूल मिलेंगे, उसको है तरसूल। पर आजकल हम क्या करते हैं, आजकल इस फार्मूले को भूल गए हैं। हम कहते हैं तो बुजुर्गों का फार्मूला है, आजकल हम क्या करते हैं, नेगेटिव हैप्पीनेस, नेगेटिव संतुष्टता, नेगेटिव शांति। कि अगर किसी ने किसी के चोट लगा दी तो शांति ये नहीं मिलेगी कि मैं चलो उसको माफ कर दूं, मैं उसके दो टांगे तोड़ूं तब मुझे शांति मिलेगी, उसने मेरी एक तोड़ी है ना, ये आजकल का फॉर्मूला है। आप देखिए, एक आदमी था, खराब आदमी था, किसी ने कहा भगवान की भक्ति कर तो जो चाहेगा तो तीन वरदान तुम्हें मिलेंगे अगर एक महीना अच्छी तरह भक्ति करेगा। उसने साथ ये कह दिया तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा, उसको पता था ये खराब आदमी है। महीना भर उसने दिल लगा के भक्ति की, देवता प्रकट हो गया, उसने बोला बोलो क्या मांगता है। आजकल क्या कहते हैं, लेटेस्ट कॉलोनी में मेरा एक फ्लैट हो जाए, बड़ा खुश हो गया, फ्लैट आ गया, बोर्ड भी लगा आ गया, उधर गर्दन करी तो पड़ोसी के दो, सारी खुशी खत्म। फिर क्या कहते हैं, आजकल डिजाइनर कार आ जाए बहुत बढ़िया हाइब्रिड, वो आ गई, ड्राइवर भी था, बड़ा खुश, पत्नी को फोन करने लगा देखो कार भी आ गई है, फिर उधर देखा पड़ोसी के दो, सारी खुशी खत्म। उसने कहा ये भगवान कैसा है, तपस्या मैं कर रहा हूं और ये पड़ोसी को डबल दिया जा रहा है, मैं भगवान को भी मजा चखाता हूं और पड़ोसी को भी मजा चखाता हूं, आज के लोग ऐसे हैं। तीसरा वरदान मांगो, कहता है मेरी एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी की दो फूट जाएंगी। ये है, अब बताओ ऐसी खुशी से लोग मजा ले रहे हैं। आप टोटली देख लीजिए कि तब हम ऊंची उड़ान क्या उड़ेंगे और हम असली सुख कैसे लेंगे, असली फार्मूले पे कैसे आएंगे। पड़ोसी के घर बढ़िया नई कार आ जाए तो खाना खाते खाते छोड़ कर कहेंगे अरे इसके घर कहां से कार आ गई, हैं, कार कहां से ले आया, सारी रात चर्चा करेंगे। अगले दिन पड़ोसी के घर पुलिस आ जाए तो खुश हो जाएंगे, हाँ अब पता लगा कार कहां से लाया। ये हमारी नेगेटिव हैप्पीनेस। इसलिए शुभ भावना, शुभ कामना हर एक के लिए विदाउट एक्सेप्शन, ऐसे नहीं सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना मेरी मदर इन लॉ को छोड़कर या फलाने, ऐसे नहीं मेरे नहीं, ये नहीं चलेगा। एक बूंद भी अगर अमृत की बाल्टी में जहर पड़ जाए तो जहर। तो ये दूसरा नंबर फार्मूला है, हमने सुखी रहना है। भगवान कर्मों का फल देता है, पक्का देता है। आज हम सब दुखी हैं, क्यों हैं? हमें चटनी खाने का स्वाद आता है, दूध पीने का नहीं आता। छोटे बच्चे को भी कहे दूध पी ले, कहेगा नहीं चाहिए, को चाट खा रहे कहेगा लाओ। तो क्योंकि संस्कार ऐसा है, इसलिए संस्कार परिवर्तन आप करेंगे तब आप जिसको कहा जाता है क्लीन माइंड एंड क्लियर इंटेलेक्ट, कि मेरा मन निर्मल और साफ होना चाहिए, मेरी बुद्धि स्पष्ट होनी, बुद्धि का निर्णय डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वही बुद्धि सही निर्णय कर लेती है, वही बुद्धि रॉन्ग निर्णय कर लेती है। और आज ऐसे दिन आने वाले हैं, मान लो अर्थक्वेक आएगा, नेचुरल क्लेमिटी बढ़ रही है, अगर आपकी बुद्धि क्लीन होगी तो ऑटोमेटिकली आप वहां खड़े हो जाएंगे जहां अर्थक्वेक का प्रभाव नहीं आना, और अगर डिस्टर्ब होगी तो जानबूझ के गलती से वहां चले जाएंगे जहां छत गिरनी है। ये हम रोज देखते हैं। इसलिए अपने हित में, अपनी शांति के हित में, अपने प्रेम के हित में आप प्रेम का वाइब्रेशन भेजेंगे, दूसरा भी प्रेम से आता है। जानवर को भी चुटकी बजाओ तो पास आके बैठ जाता है, इंसान को नहीं बैठेगा। हमने मन के अंदर दीवार पैदा कर ली, कुछ भी ना बोले, सोच रहे हैं ये फलाना ऐसा है, हाँ ये ऐसे, तो उसके अंदर एक इनविजिबल वॉल पैदा हो जाती है जिससे रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो घर में बैठे बैठे शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, प्रभु चिंतन सबसे अच्छा, क्योंकि परमात्मा अच्छी अच्छी गुण हमको भरता है। और देने का भाव रखो, फिर देखो अगर चेंज ना आए, हो नहीं सकता। एक बात, एक दो बातें और सुन लीजिए। इस दुनिया में कोई भी चीज अपने लिए नहीं बनी है, आज हम ये सोचते हैं ना कि सेल्फ सेंटर्ड हो गए, सारी दुनिया मेरे लिए बनी है, सारी चीज मेरे को सुख देनी चाहिए, मेरा ही फायदा होना चाहिए। नहीं, सारी दुनिया की तरफ देखो, दुनिया में एक भी चीज अपने लिए नहीं बनी है। मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूं, पानी का ग्लास भर के ले आओ, ये पड़ा है, ये अपने लिए बना है या दूसरे के लिए बना है? किसी दूसरे को पानी पिलाने के लिए बना? आप ये कुर्सियों पर बैठे हैं, अब ये कुर्सियां अगर खाली हॉल पड़ा रहे किसी काम की हैं? कुर्सी खुद को यूज करते हैं या कुर्सी को कोई दूसरा यूज करता है? दूसरा करता। एक भी चीज नहीं है जो अपने लिए बनी हो, हर चीज दूसरे के लिए बनी है और हर दूसरी चीज दूसरे को सुख दे रही है। अब इस फंडामेंटल फार्मूले को भी अगर हम ना जाने, हम सोचे सब कुछ मेरे लिए बना है, मेरी ही खुशी के लिए, तो अगर हम ये सोचने लग जाए कि मेरा काम दूसरों की सेवा करना, दूसरे आप ही मेरी सेवा करेंगे। सूर्य किसी से प्रकाश नहीं मांगता, गर्मी नहीं मांगता, वो करता ही रहता है और उसका कभी घटता नहीं है। सागर में सारी नदियां पानी भरती रहती हैं, फिर भी आप देखोगे सागर कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं किसी से पानी ले लूं, अपने आप भरती है। क्यों? सागर नीचा होता है, नदियां ऊंची होती हैं। अगर हम भी नीचे हो जाएं, निर्माण हो जाएं, तो सब हमको कुछ दे जाएंगे और अगर हम अपनी समझ से ऊंचे हो जाएं तो हम समझेंगे हम ऊंचे हो गए, सब हमको खाली कर जाएंगे। इसलिए ये सिंपल फार्मूले हैं, संतुष्टता कोई बड़ी चीज नहीं है। तो दो बातें और हैं, वो है हर व्यक्ति दिल से क्या चाहता है। वो सम्मान चाहता है, उसको रोटियां नहीं चाहिए, उसको कपड़ा नहीं चाहिए, हर व्यक्ति एक्नॉलेजमेंट चाहता है कि मेरा थोड़ा कोई सम्मान। आप भी देखेंगे दुनिया में, आपने अपने सर्वेंट से काम कराना हो, एम्प्लॉय से काम कराना हो, किसी सिपाही से भी कराना हो, तो आप सिपाही को थानेदार कहते हैं तो वो कर देता है, नौकर को बेटा कह के करते हैं तो कर देता है, करता है कि नहीं, मतलब के लिए हम करवाते हैं। लेकिन फंडामेंटल फार्मूला कि ये भी इंसान है, उसको कुछ वो खुश हो जाएगा बस। तो खुशी कोई कॉस्ट तो नहीं करती। अगर हम ये फार्मूला कर लें कि बड़े को रिगार्ड और छोटे को प्यार, ये नहीं देखना उसमें क्या नुक्स है उसमें ना। गवर्नमेंट में मंत्री बना देते हैं, मंत्रियों को कईयों को लिखना भी नहीं आता होता, उनके घर में क्या फर्नीचर पड़ा वो भी नहीं आता होता, लेकिन उनके सेक्रेटरी आईएएस होते हैं, वो कभी ये नहीं बोलते कि ये तो बुद्धू है, ये तो पागल है, नहीं, वो उसकी इज्जत को बढ़ाते हैं, वो आईएएस के आधार पर ही मंत्री चलता है। इसलिए आप समझदार हैं, यहां आए हैं, स्पिरिचुअल हम स्पिरिट हैं, स्पिरिचुअल फॉर्मूले हैं। अगर आपने मन की उड़ान भरनी है विदाउट डिस्टर्बेंस, एक तो मन के अंदर फालतू ख्याल नहीं लाइए। सबसे ज्यादा चीज आजकल क्या हो गई है, वेस्ट थॉट्स। एक होता भी जो काम करना उसका सोचो, एक करने से पहले ही उसके लिए डाउट पैदा हो जाता है। गीता में लिखा हुआ है संशय आत्मक बुद्धि विनशन्ति, निश्चय आत्मक बुद्धि विजयन्ति। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं आपकी विजय श्योर है। हम क्या करते हैं, मान लो हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, ये नहीं सोचते चलो कोई बीमारी है, कोई कर्म का अकाउंट है ना, अगर वहां गया मेरे को कुछ हो गया फिर क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वेस्ट थॉट्स, इसका कोई फायदा नहीं है। वो आपके मनोबल को घटा देते हैं, मन की स्पीड को घटा देते हैं, मन की दिशा को चेंज कर देते हैं, विल विंड में घुमाते रहते हैं या वाटर पूल में, तो आप देखेंगे फायदा कुछ भी नहीं निकला। एक काम करने के लिए 100 थॉट फायदा करते हैं। और क्या होता है, जब काम करने से पहले मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, जब काम करने का मौका आता तो ब्रेन डेड। इसीलिए पहली बात, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं। दूसरी बात, आत्मा के अंदर ही खराबियां आई हुई हैं, जिसको हम अभिमान कहते हैं, क्रोध कहते हैं, लोभ कहते हैं, बुरी दृष्टि, उसको निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, भगवान से शक्ति लेंगे, प्रभु चिंतन से, तो बेड़ा पार। अब आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक होता है कि पहले बीमारी पैदा हो फिर हम उसका इलाज सोचे, और एक होता है बीमारी पैदा ही ना हो। तो कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप एंग्जाइटी को जन्म ही मत दीजिए ना। पहली बात यह कि जब मैं पॉजिटिव अप्रोच रखता हूं, मेरे लिए तो दुनिया चेंज हो गई, क्योंकि मैंने तो खराब देखना ही नहीं, तो खराब अंदर लाना ही नहीं। एक व्यक्ति सुबह सुबह निकले और अपने 6 घर इधर जाए एक बाल्टी लेकर, यदि आपके घर का जितना कूड़ा करकट है सफाई किया मेरी बाल्टी में डाल दो, वो सोचेंगे ये क्या हो गया इसको। दूसरे के जाए कहती मैंने अपना ड्राइंग रूम सजाना है इस कूड़े से, हंसेंगे कि नहीं। अब ये तो हो गई फिजिकल बात, मेरा मन है। अब मैं अपने मन में अपने 6 पड़ोसियों की सारी खराबियां अपने मन में भर लूं, वो क्या है, वो भी तो कूड़ा भरना ही है ना. आई शुड नॉट अलाउ. वो मैंने कहा कि आप अपनी खूबियों को याद करिए सिर्फ, लेकिन खूबियों को विदाउट ईगो. कभी कभी हमारी खूबी हमारी कमजोरी बन जाती है. खूबियां भगवान ने दी हैं, अच्छी बात है, लेकिन खूबियों को निर्माणता से यूज करेंगे तो खूबियां आपको खुशी देंगी, और खूबियों को जरा सा अभिमान आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. मान लो आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, आपके गीत सब पसंद करते हैं, और एक दिन किसी प्रोग्राम में आपको बुलाया, आप जाते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि मेरा गीत इसमें हो जाए, अच्छी बात है. आप स्टेज सेक्रेटरी को कहते हैं, जी देखो इतने लोग आ रहे हैं, चीफ गेस्ट आ रहे हैं, मेरा गीत करा देना. वो कहेगा ठीक है, टाइम मिलेगा तो करा देंगे. ये तो हो गया. अब आप वहां बैठे हैं, सारा प्रोग्राम हो रहा है, आपको प्रोग्राम इधर से उधर निकल रहा है, आपकी एक ही थॉट है, मेरा गीत कब होगा, मेरा गीत कब होगा. आप सारा प्रोग्राम मिस कर देंगे. अच्छा, मान लो चीफ गेस्ट देर से आना है, कहते जी ट्रैफिक में फंस गया है, वो आपको बुलाता है, भाई साहब आप अपना गीत गा दो. अब आप सोचते हैं चीफ गेस्ट के सामने तो हुआ नहीं, फिर मेरे गीत का क्या फायदा. तब आपकी कमजोरी हो गई. और कहीं स्टेज सेक्रेटरी ने किसी दूसरे से गीत गवा दिया, चलो ये नया आदमी इसको, तो आप सारा दिन आपका मजाज खराब रहेगा, उसको गाना भी नहीं आता, उसको कोई जानता भी नहीं, लो उससे गीत गवा दिया. इसलिए आपकी विशेषता आपकी कमजोरी हो गई. अगर आप ये समझते कि मैं ठीक गाता हूं, सारे लोग ठीक मेरा सुनते हैं, जब कोई कहेगा मैं गा दूंगा. इसलिए एक और बात आती है, अच्छी दुनिया में जिसको हम सतयुग कहते हैं, एवरीथिंग हैपन्स एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस इन द राइट मैनर. हर आज भी अगर आपने कुछ भी करना हो तो ठीक समय पर, ठीक स्थान पर और ठीक विधि से करिए. अगर एक भी फैक्टर बिगड़ गया तो प्रॉब्लम है. मुझे बहुत अच्छा गाना आता है, मैं आधी रात को गाना शुरू कर देता हूं, पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर आप बताइए. एक पड़ोसी ने दूसरे को रात को 12 बजे फोन किया, देखिए आपका कुत्ता बहुत जोर जोर से आवाज कर रहा है, मेरी नींद खराब हो रही है. दूसरे पड़ोसी ने अगली रात को 12 बजे उसको फोन किया, भाई साहब मेरे घर में तो कुत्ता है ही नहीं, आप बताओ. बदला लेने के लिए आइडिया यह है कि हम समय को देखकर, वही बात, ठीक समय पर होगी तो अच्छी, समय बदल दोगे तो बिगड़ जाएगी. ठीक स्थान पर होगी, अब किसी जगह खुशी का मौका है और आप काले कपड़े या सफेद कपड़े पहन के चले जाएं, वो कहेंगे इसको हमारा मौका खुशी का पता नहीं क्या हो गया इसको. और कहीं गम का मौका है, वहां आप टिप टॉप होके चले जाए, वो भी फिट नहीं बैठता. इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने हम अपने मन को ट्रेन करें कि जहां ले जाना है, जितने समय के लिए ले जाना है, वहां उसको ले जा सकें, फिर उसको वापस भी ला सकें. आमतौर पे जो हमारी पसंद की बातें होती है, वहां मन ऐसा लग जाता है, हम उसको हटाना चाहें तो हटता नहीं, ये भी रॉन्ग है. तो कलयुग और सतयुग में यही फर्क है. आजकल एनीथिंग कैन हैपन टू एनी वन एनी टाइम एनी वेयर. आजकल ये है, नो नोटिस पीरियड. जब हम बच्चे थे, हमारे वक्त में भी बारिश होती थी, स्कूल से पता लग जाता था, थोड़े बादल आने शुरू हुए हैं, फिर थोड़े थोड़े बादल काले होने शुरू हुए हैं, फिर थोड़ी थोड़ी बिजली कड़कनी शुरू हुई है, तो काफी नोटिस पीरियड होता था. हम घर पहुंच जाते थे तो पहली बूंद गिरती थी, हर व्यक्ति को पता लग जाता था बारिश होने वाली है। आजकल की तरह वो नहीं होता था, क्लाउड बस्ट, हर चीज का नोटिस पीरियड होता था। मृत्यु से पहले भी व्यक्ति थोड़ा बीमार होता था, बुजुर्ग होता था। तो आजकल क्या है, हमने नोटिस पीरियड उड़ा दिया, सब मर्यादाएं तोड़ दी। नदियों में स्नान करने जाते हैं गंगा में, और गंगा में फ्लड आके आपके घर भी बिगाड़ देता है, नदियां भी बेचारी क्या करें। तो इसलिए हमें अपनी मर्यादाओं का पालन, कोई कोई बड़ा होगा, हाँ बड़ा है छोड़ो, आज मैंने उसको ऐसे कह, कल मेरे को दूसरा कहेगा, जैसे करो मैं करूंगा, गीता में लिखा हुआ। जब हमारे साथ होते हम दुखी होते हैं, जब हम करते हैं तो हम दुखी नहीं होते। ये इसलिए कैरेक्टर बिल्डिंग, अपने मर्यादाओं को धारण करना अति आवश्यक है, फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे यहां सिखाया जाता है कि धैर्यता, हर चीज को समय देकर करें। आज हम धैर्यता का छोड़ के हर चीज क्विक क्विक फास्ट फास्ट फास्ट, खाना भी खाएंगे फटाफट, पता भी नहीं लगेगा क्या खाया। धैर्यता गई, मधुरता गई, नम्रता गई, फिर बचा क्या? तो ये बात है। और पूछिए, एक सवाल और पूछ लीजिए।
फ्लाइंग हाई, आज का टॉपिक है फ्लाइंग हाई सेलिंग स्मूथ। सो एज अ ह्यूमन बर्थ, मतलब मनुष्य जीवन का सबसे उच्च लक्ष्य क्या है, गोल क्या है? कहते हैं कि मनुष्य जीवन 64 लाख बर्थ्स के बाद मिलता है, तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमको कहाँ पहुंचना है, और मोक्ष के बारे में आप कुछ बता सकते हैं इस स्थिति में, इस रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन।
बहन जी ने एक सवाल में 5 सवाल पूछ लिए हैं। अच्छा, पहले तो 84 लाख योनियों से लेकर मोक्ष तक, चलो कोई बात नहीं। कई बार क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट देने से एक तो और क्वेश्चन पैदा हो जाते, एक डाउट पैदा हो जाता है। इन शॉर्ट, पहली बात कि ब्रह्मा कुमारीज में हमको ये ज्ञान मिला है ईश्वरी, कि मनुष्य आत्मा सदा मनुष्य योनि में ही पुनर्जन्म लेती है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम 84 लाख योनियां भुगत कर मनुष्य जन्म लेते हैं, इसलिए दुर्लभ है। अगर सचमुच हम इतनी योनियां भुगत के मनुष्य जन्म लेते तो कोई बच्चा लंगड़ा अंधा मोरोन पैदा नहीं होता, जल्दी से मर नहीं जाता, क्योंकि वो तो भुगत चुका है। और हम दुख और सुख मनुष्य योनि में भोगते हैं। किसी भी ज्योतिषी के पास जाएंगे वो आपको आपका पिछला जन्म भी मनुष्य योनि का बताएगा, अगला भी। ये शॉर्ट में है। दूसरी बात, मनुष्य योनि का लक्ष्य क्या है? मनुष्य योनि का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न देवता जैसा मनुष्य बनना, श्रेष्ठ मानव बनना, जो सुख दे और सुख ले। इसका ऑपोजिट क्या है कि हमें आसुरी संस्कार जो हैं, जो दुख देने और दुख लेने वाले हैं, उसको त्यागना है। गीता के 16वां चैप्टर में लिखा हुआ है कि दो तरह के लोग होते हैं, दो सोसाइटीज होती हैं, एक को दैवी संपदा कहते हैं, एक को आसुरी संपदा कहते हैं। तो दैवी संपदा वाली सोसाइटी सारी की सारी में सर्वगुण संपन्न होते हैं, वो गुणों का आदान प्रदान करते हैं। और आज की दुनिया में अब गुणों का आदान प्रदान, मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता। तीसरी बात आ गई मोक्ष की। अब मोक्ष लोग समझते हैं हाईएस्ट गोल इन लाइफ है कि ऐसी जगह चले जाओ जाके हम इस दुनिया के जन्म मरण में आना ही ना पड़े, हमें सुख नहीं चाहिए, कम से कम दुख से तो छूट जाएंगे। अब देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई चीज तभी हो सकती है अगर पहले कभी हुई हो। अगर हम कभी मोक्ष में रहे होते तो आज यहां नहीं होते। और क्योंकि आज हम यहां हैं, इसका मतलब हम कभी मोक्ष में नहीं थे, इसलिए हम कभी मोक्ष में हो नहीं सकते। हम कर्मों के हिसाब से सुख और दुख के पुनर्जन्म लेते रहते हैं। कुछ समय के लिए हमारी मुक्ति होती है। मुक्ति और मोक्ष में फर्क है। एक होता है एक्टर जो है उसको पार्ट किसी समय नहीं मिलता तो स्टेज के पीछे रहता है। हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, इकट्ठी नहीं आती हैं, आबादी बढ़ती है तो उतना समय हम पार्ट से मुक्त रहती हैं। किस क्राइस्ट का रोल अपने समय पर शुरू होता है, महात्मा बुद्ध का अपने समय पर शुरू होता है, गुरु नानक जी का अपने समय, जैसे पेड़ में पौधे पत्ते उगते हैं फूल उगते हैं। परंतु मोक्ष भगवान को भी नहीं है, क्योंकि भगवद गीता इस बात का प्रूफ है कि एक बारी कम से कम भगवान को भी आना पड़ता है मनुष्यों को सिखाने के लिए। ये शॉर्ट में आंसर है। ज्यादा लेने हो तो हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए। ओम शांति। अच्छा, अब लास्ट में एक बात आपसे पूछनी चाहते हैं कि सचमुच अगर इसी वक्त भगवान आपको कहे कि मैं बहुत खुश हूं, आप माउंट आबू आए, ज्ञान सरोवर में आए, फ्लाई हाई करने के लिए आए, सेल स्मूथ करने के लिए आए, उसने आपकी सुन ली है और वो कहता है ये शरीरों से तो होगा नहीं, आत्माओं को आपकी को ले चलता हूं ऐसी दुनिया में जहां ये दोनों चीजें मिलेंगी, आप जाने को तैयार हो या कहोगे मैं घर जाके कुछ अरेंजमेंट करके वापस आता हूं? एक बार नारद जी भगवान के पास चले गए और बोले मैं एक प्रपोजल लाया हूं कि भगवान मैंने सुना है कि सतयुग वगैरह में आबादी बहुत थोड़ी होती है और हमारे कलयुग में तो आबादी इतनी हो गई के लिए भी नंबर लगता है, लोग ऊंचे ऊंचे घरों में रहते हैं, धरती पर रहते ही नहीं, हर जगह भीड़। आप तो भगवान हो, दयालु हो, न्यायकारी हो, तो क्यों नहीं थोड़े से लोगों को आप कलयुग वालों को सतयुग में भेज दो ताकि थोड़ा सा बैलेंस बराबर हो जाए। अब प्रपोजल तो अच्छा है कि नहीं? तो भगवान ने किया, क्या किया होगा? भगवान मुस्कुराए। भगवान सिर्फ मुस्कुराते ही हैं, उनकी मुस्कुराहट में हर एक का आंसर होता है। उन्होंने कहा नारद मैं तुम्हें ही परमिशन दे देता हूं कि जाओ धरती पर, जितने लोग कलयुग के सतयुग स्वर्ग में आना चाहते हैं उसको ले आओ। वो बड़ा खुश हो गया, वाह भाई वाह, मेरे तो परमिशन मिल गई। तो सीधा एक होलसेल बिजनेस एरिया में एक बिजनेसमैन अपने अंडरग्राउंड कमरे में पैसे गिन रहा था, तो नारद जी वहां प्रकट हो गए और बोले नारायण नारायण। उसने देखा आप कहां से आ गए? उसने कहा अरे स्वर्ग में एक सीट तुम्हारे लिए खाली है, ये छोड़ो कलयुगी खराब चीजें। वो बोला कि पहले ये बताओ आप एंट्री कहां से ली आपने यहां? मैं ब्लैक मनी गिन रहा हूं, क्या पता आप किसके एजेंट हो, जल्दी से चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस को फोन करता हूं। अब नारद ने सोचा इसके पल्ले पड़ने वाला है नहीं, वो वहां से लुप्त हो गए। आगे उन्होंने देखा कि एक महात्मा जी हैं, बहुत बड़ा आश्रम है, खुला नया नया बना है, उसके बाहर निकल रहे हैं। उसने कहा ये तो भगवान का बंदा है। तो जाके फिर कहा नारायण नारायण महात्मा जी, भगवान ने आपकी सुन ली, परमात्मा ने आपको बुलावा किया है, आपको मुक्ति देने के लिए भगवान बिल्कुल तैयार है। वो बोले भाई ऐसा है कि मैंने नया आश्रम बनाया है, अभी इसकी ओपनिंग नहीं हुई, मंत्री जी से बात चल रही है, इसलिए मैं अभी तो नहीं जा सकता। उसने कहा छोड़ो आश्रम को महाराज, नहीं मैं नहीं जा सकता। अब नारद जी को चिंता पड़ी कि भगवान मुस्कुरा रहे थे, ये तो कोई भी जाने को तैयार नहीं है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। एक माता देखी उसने, वो बड़ी बुजुर्ग कमजोर लाठी पकड़ी हुई, हाय हे राम मुझे उठा ले, हे राम मुझे उठा ले, ऐसे कर रहे। उसने सोचा कम से कम इसको ले जाऊं, ये तो कह ही रही है मुझे उठा ले, एक तो सैंपल पेश करूंगा। उसके पास चला गया, माता जी भगवान ने आपकी सुन ली, आप कह रहे हो मुझे उठा ले, मुझे भेजा उन्होंने दूत आपके लिए, आप चलिए आपको स्वर्ग में भगवान भेज देगा। तो माता जी तो चेंज हो गई बिल्कुल और कहती है तू कौन है? उसने कहा मैं आपको जो आप कह रही हैं, कहती है, अभी तो मैंने अपने पोते की शादी करनी है, मैं नहीं जा सकती। तो उसने कहा आप तो कह रही थी भगवान मुझे उठा ले, वो मैं ऐसे झूठ मूठ कह रही थी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि भाई पक्की बात बताओ, ऐसा ना हो कि फिर मौके पे आप कह दो, क्योंकि माउंट आबू में मैंने देखा था ब्रह्मा बाबा के टाइम में एक महात्मा जी आए, 5-7 दिन रहे, बड़े खुश, भगवान का घर है रहे। एक दिन वो ब्रह्मा बाबा के कमरे से निकल रहे थे तो किसी ने कहा भाई आप बाबा के कमरे में क्या देखने गए थे? बोला मैं देखने गया था कौन सी किताबें शास्त्र लेकर ये रोज ज्ञान सुनाते हैं। उसने कहा ये किताबों से नहीं सुनाते। अच्छा, फिर आए तो बोले बाबा मैं यहीं रह जाऊं? हाँ, बाबा ने कहा क्यों नहीं रह जाओ, तुम्हारा दिल करता है, सब रहे हुए हैं। 10-12 दिन बाद वो फिर आए, बाबा बैठे थे, बोले मैं सोचता हूँ बाबा मेरा वहां आश्रम है, कुछ मेरे हिसाब किताब है, शिष्य है, मैं एक बारी जाके उनसे छुट्टी लेके सब समेट के आ जाता हूँ। बाबा ने कहा जैसी तुम्हारी अर्जी इच्छा। मैं भी वहां बैठा था, बाबा ने कहा ये आएगा नहीं, और सचमुच नहीं आया वो। इसलिए ये सोच लेना चाहिए कि हम रियली जेन्युइनली जो हम कहते हैं, जैसे बहन जी मोक्ष की बात कर रही हैं, अच्छी बात है। हम जब हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहता है कल तेरा मोक्ष हो जाएगा, हम कहते हैं नहीं डॉक्टर जी मैं बच जाऊंगा। हर व्यक्ति चाहता है मेरी आयु लंबी हो। साधु लोग भी धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव कहते हैं तब कुछ उनको दक्षिणा मिलती है। अगर वो कहें तेरी परसों छुट्टी होने वाली है तो उसको कोई नहीं देगा। इसलिए असल में हम मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष दुख से चाहते हैं, हम कोई जीवन से मुक्ति नहीं चाहते। जब सुख में सिमरन कोई ना करे, दुख में सब करें, दुख से तो भगवान कहता है मैं तुम्हारे दुख छुड़वा देता हूँ, फिर तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना बेटाइम मृत्यु होगी। आजकल तो हम मृत्यु लोक में बैठे हैं, पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए, है ना। और जो बुजुर्ग भी हैं, किसी का कोई अंग नहीं चलता, किसी का हाय हाय करते रहते हैं, तो इसलिए इससे छुट्टी चाहते हैं। तो भगवान कहता है इसीलिए मैं, जब मनुष्य दुखी हो जाते हैं, अपने को जानते नहीं, रॉन्ग चीजों को राइट समझते हैं, राइट को रॉन्ग समझते हैं, आसान को मुश्किल कर लेते हैं, तो मैं आता हूँ। इसलिए और बातें छोड़िए, 3-4 बड़ी सिंपल बातें हैं कि मैंने कभी लेने का इच्छा नहीं करनी, देने की इच्छा करनी। सारी दुनिया की हर चीज आप देखेंगे आप संतुष्ट हैं। दूसरी बात, मैंने हर एक के लिए शुभ भावना रखनी, वो कुछ भी हो तो मेरा मन प्रसन्न रहेगा, मौज आयु आपकी बढ़ जाएगी, चिंता होगी नहीं। जो पहले चिंता हो फिर उसको निकालें। अच्छा, आप एक मिनट के लिए सिर्फ आप सब बैठ जाइए और अपनी जिंदगी की अच्छी अच्छी खुशी की बातें याद करिए, साथ भगवान को भी करिए।